कुछ लोग ये कहते हैं कि आम तौर पे जो रिलीजन्स होते हैं वो पावर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दो। इस पे तो बाकायदा तौर पे कुरान पाक में आयत उतरी है। लेकिन अगर कोई ब्राइबरी करता है, कोई करप्शन करता है, तो उसके ऊपर बाकायदा इस तरह की कोई आयत, कोई हदीस दुनिया के अंदर उसकी सजा के लिए नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा इसी से रिलेटेड है, ब्लड मनी के हवाले से, कि अगर कोई मदद दियत दी जाती है तो वो गरीब आदमी तो नहीं दे सकता। जो पावरफुल है, जिसके पास पैसा है, उसके लिए तो फिर कत्ल करना आसान हो गया कि वो दियत दे के उससे निकल सकता है। ये इस इशू के अलावा मेरा एक सवाल और है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, मुझे उसकी इंटरप्रिटेशन चाहिए। कुरान पाक के अंदर एक जगह पे एक आयत है, शायद पारा नंबर 2 है, उसके अंदर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि कोई ईसाई हो, कोई यहूदी हो या कोई साबी हो, और वो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर यकीन लाए तो उसके लिए कोई अजाब नहीं होगा एट द डे ऑफ जजमेंट। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और आयत आती है, शायद पारा नंबर 5 के अंदर है, वो मुझे कंफर्म नहीं है, कि जो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होगा, कोई भी हो जो इस्लाम में नहीं होगा, उसके लिए आखिरत के दिन अजाब होगा। मुझे इन दो आयात की इंटरप्रिटेशन चाहिए, और जो सवाल मैंने पहले किए हैं मुझे उनका जवाब चाहिए।
इनका पहला सवाल ये था कि कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो रिलीजन होते हैं वो पावर को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे चोरी के लिए तो सज़ा बयान कर दी, करप्शन और रिश्वत और इस तरह के जो मामलात हैं उनके लिए सज़ा बाकायदा बयान नहीं की गई है, उसकी क्या वजह है? और जैसे उन्होंने दियत के बारे में बात की कि एक अमीर शख्स के लिए फिर कत्ल करना आसान हो जाएगा और गरीब तो कभी उसको ये सोचेगा अगर मैं कत्ल कर दूंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा, तो ये मसला है।
देखिए, चोरी ये महज यही नहीं होती कि मैंने आपकी जेब से 10 रुपये उड़ा लिए या आपके यार घर में नकब लगा ली है। जब कोई शख्स कौम का खजाना लूटता है तो ये भी चोरी है, बल्कि इससे आगे बढ़कर अगर वो दीदा दलेरी से ये काम कर रहा है तो ये डाके तक नौबत पहुंच जाती है। और आपको मालूम है कि सूरह मायदा में इस तरह के फसाद करने वालों की क्या सजाएं बयान हुई हैं। तो चोरी की जो तारीफ हमारे यहाँ आमतौर पर फुकहा ने की है वो कोई शरीयत नहीं है। हमें देखना चाहिए कि आज के ज़माने में ख़यानत की क्या किस्में हैं, गबन की क्या किस्में हैं, कौम को नुकसान पहुंचाने की क्या किस्में हैं जिसको हम चोरी के तहत लाएंगे। यानी इसमें आप कौम का माल चुरा लेते हैं, किसी फ़र्द का माल चुरा लेते हैं, किसी इदारे का माल चुरा लेते हैं। तो असल में जो उसूल हैं उनको सामने रखना चाहिए और उनको सामने रख के चीज़ों का इल्हाक करना चाहिए। देखिए, इसी तरह की गलती हमारे यहाँ ज़कात के मामले में हुई है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों की ज़कात बयान की, बल्कि तमाम अंबिया ने वही बयान की है, जानवरों की ज़कात बयान की, इसी तरह से पैदावार की ज़कात बयान की। अब पैदावार को हम ज़रई पैदावार ही समझते हैं, दौरे हाजिर में पैदावार की दसियों और अकसाम वजूद में आ गई हैं। सनती पैदावार भी पैदावार ही है। आप बड़े बड़े प्लाजे खड़े करके उनका किराया लेते हैं, ये भी पैदावार ही है। मैं इसकी दसियों और मिसालें दे सकता हूँ। तो ये ज़रूरत है कि आप आज के ज़माने में इज्तिहाद करके देखें कि क्या चीज़ किससे मुलक होगी। कुरान मजीद ने एक नहायत जामे लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है, वो जो आपका माल चुरा लेता है, वो आपका माल भी हो सकता है, वो कौम का माल भी हो सकता है, उसके लिए सजाएं मौजूद होंगी। तो पहले तो ये उसूली बात समझ लीजिए। दियत के बारे में ये ज़रूरी है कि पहले आप पूरे कानून को समझें वो क्या है। कानून ये है कि अगर किसी जगह कत्ल के जुर्म का इर्तकाब हो जाता है तो पहले ये फैसला किया जाएगा कि क्या फिलवाके हमने कातिल को पकड़ लिया है, यानी जुर्म साबित हो जाएगा। जब जुर्म साबित हो गया तो दो चीज़ों का अदालत लिहाज करते हुए, एक जुर्म की नौइयत, एक मुजरिम के हालात, ये फैसला करेगी। अदालत भी कर सकती है और आप इसके लिए पार्लियामेंट में कानून साजी भी कर सकते हैं। वो फैसला करेगी कि इस आदमी को अब रियायत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये हिस्सा हमारे यहाँ सिरे से जेरे बहस ही नहीं है। पहले ये फैसला किया जाता है, क्या ये रियायत का मुस्तहिक है, और रियायत का इस्तेहकाक कैसे पैदा होता है, या जुर्म की नौइयत ऐसी होती है कि वो रियायत का तकाजा कर रही होती है, या मुजरिम के हालात ऐसे होते हैं कि वो रियायत का तकाजा कर रहे होते हैं। पहले ये फैसला होगा। अगर ये फैसला हो गया कि रियायत का मुस्तहिक नहीं है मुजरिम, इसको सजा मिलनी चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बाद ऐसे वाकयात हुए थे जिनमें पूरा का पूरा कौमी जमीर चीख उठा था कि यह रियायत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के मौके पर किसी बारिश से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कोई दियत का सवाल ही नहीं है। हुकूमत को हक हासिल है कि वो मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचा दे, यहाँ किसास ही होगा, कोई दूसरी सूरत नहीं। अदालत इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि नहीं, मुजरिम रियायत का मुस्तहिक है। जब वो रियायत का मुस्तहिक होने का फैसला कर लेगी تو اس کے بعد پھر قرآن مجید نے پابند کر دیا ہے کہ اب وارثوں کی مرضی بھی ضروری ہے. یعنی یہ مرحلہ ہے جس میں وارثوں کی مرضی معلوم کی جاتی ہے. اب دیت پر معاملہ ہوگا, تو دیت پر اگر اس طریقے سے معاملہ ہوگا اور کوئی آدمی دیت دے کے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو اس کی ذمہ داری ریاست کے اوپر آ جائے گی, وہ ادا کر دے گی. تو اس لیے کسی غریب اور امیر کا کوئی سوال پیدا نہیں.
اچھا جاوید صاحب, یہ جو دوسرا سوال تھا وہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو دو مقامات پر آئی ہے, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, وہ والی آیت میں ظاہر ہے کہ یہ چار گروہوں کی اگزامپل دے کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا, آخرت پر یقین رکھے گا اور عمل صالح کرے گا, اس کے لیے کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا. لیکن دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلام میں اگر داخل نہیں ہوگے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. ان کا ذرا کس طرح سے کمپیریزن کریں؟
یہاں پہ پازیٹو دعوت بیان کی جا رہی ہے, ایجابی دعوت بیان ہو رہی ہے. یہاں جرائم نہیں بیان ہو رہے, یہاں پر ایجابی دعوت بیان ہو رہی ہے. دعوت کیا ہے اسلام کی؟ یہی دعوت ہے. محمد الرسول اللہ کی دعوت بھی یہی ہے, آدم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ہے, نوح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ہے, قرآن مجید کی پوری دعوت بھی یہی ہے. اس کے بعد ہے جرائم. ایک آدمی خدا کو بھی مانتا تھا, آخرت کو بھی مانتا تھا, اچھا عمل بھی کرتا تھا, اس نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا, چلا جائے گا جنت میں؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, بیان کرتا ہے نا. اچھا, قرآن مجید کی سورہ نساء, اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ میراث دینے سے انکار کر دیتے ہیں, یعنی ان کے پاس حق تھا دوسروں کا, انہوں نے نہیں ادا کیا, اس پر ابدی جہنم کی وعید سنا دی گئی. تو اسی طریقے سے جب کسی آدمی کو خدا کے کسی پیغمبر کی دعوت پہنچی اور اس نے بغیر کسی سبب کے اس کا انکار کر دیا, وہ بھی قتل سے بڑا جرم ہے, تو وہاں جرائم نہیں بیان ہوئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہر مسیحی, ہر بدھ, ہر ہندو کو اس سوال کا جواب دینا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت اس نے کس بنیاد پر رد کی ہے. کوئی عذر پیش کرے گا تو خدا کے ہاں بچ جائے گا, عذر نہیں ہے تو جواب دینا پڑے گا. تو پیغمبر کا انکار کرنا جرائم میں سے ہے. اسلام کی بنیادی دعوت وہی ہے جو بیان کر دی گئی ہے.